हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 9 और 10। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति, गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, श्लोक नंबर 9। कृपया मेरे साथ सतुचारण करने का प्रयास कीजिए। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः, पूजयामास धर्माख्यो देशकाल विभागवेत्। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवेत् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मख्यो देशकाल विभागवेत् शब्दात् तान् समेतान् महाभाग ओम सभी समेतान् मतलब समवेत महाभाग अत्यंत ही शक्तिशाली पुरुषों को उपलभ्य पाकर वसुत्तम वसु में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने पूजयामा आस स्वागत किया धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता देश काल विभागवित देश मतलब स्थान काल मतलब समय विभागवित मतलब जो देश काल के अनुसार अपने को समंजित कर लेता है। अनुवाद आठ वर्षों में श्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर समवेत महान तथा शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत किया क्योंकि भीष्म देव देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों के ज्ञाता थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पटु धर्मविद भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धर्म को समंजित किया जाना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों या विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति की। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महापुरुषों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर पाने में शरीर से असमर्थ थे क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे और न सामान्य रूप से स्वस्थ थे, लेकिन उनका मस्तिष्क पूरी तरह कार्य कर रहा था और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सकते थे, इसीलिए वे सभी आगंतुकों की ठीक से उनका सत्कार कर सके। मनुष्य मन से वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि समुचित स्थान पर उनका किस तरह से उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज जब अपने शोक से बाहर नहीं आ रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को उनके भाइयों के साथ भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पुनः लेकर आए, जहां पर भीष्म पितामह शिरसैया पर लेटे हुए थे और वहां पर युधिष्ठिर महाराज के साथ उनके समस्त भाई समस्त राज्य ऋषि समस्त ब्रह्म ऋषि सब वहां पर इकट्ठे हुए। क्यों? उनका प्रवचन सुनने के लिए। वो सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके विषय में हमने कल पढ़ा, वो सब यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर भीष्म पितामह का ऐसा क्या महत्व है, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनका स्वयं बादरायण वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, कश्यप मुनि और विशिष्ट मुनि और नारद मुनि, इतने बड़े बड़े सारे देवर्षि वगैरह सब यहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं उनका प्रवचन सुनने के लिए, क्षत्रिय थे वो। तो आज हम कुछ भीष्म पितामह के विषय में पढ़ेंगे कि वास्तव में उनके अंदर क्या क्वालिटीज थी। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा, तान समेतान महाभाग उपलभ्य वसुत्तमः, कि वो सब जितने भी राज ऋषि आए थे, ब्रह्म ऋषि आए थे, वो सब भीष्म पितामह के सामने आ गए। वो जो भीष्म पितामह वसुत्तम यानी वसुओं में श्रेष्ठ थे, भीष्म पितामह एक वसु थे और समस्त वसुओं में 8 वसु होते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो थे वो भीष्म पितामह थे। और इससे पहले भीष्म पितामह को कहा गया, श्लोक नंबर 5 में याद है, राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। भरतपुंगवम् यानी भरत, जो भरत कुल है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे भीष्म पितामह। ये जो भारतवर्ष दुष्यंत के पुत्र, जो भरत का वंश है, उसमें सबसे ज्यादा यशस्वी, बहुत ज्यादा यशस्वी जो थे वो भीष्म पितामह थे। ये महाभागवत है, जैसे 12 महाजन हैं, नारद, प्रहलाद, कपिल, कुमार, जनक, व्यास, उनमें 12 महाजनों में भीष्म पितामह का नाम भी आता है। तो ये भीष्म पितामह इतने पवित्र व्यक्ति थे कि उनका इतना पिता के प्रति ऐसा भाव था, पिता के प्रति ऐसी भक्ति थी कि उनको उनके पिताजी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और उनकी पिता भक्ति से जो हमें वैराग्य दिखता है ना, उसका संसार में और कोई दूसरा ऐसी मिसाल नहीं है। इतना सुंदर उनका वैराग्य, मतलब यहाँ पर बताने का क्या मतलब है कि वो व्यक्ति निस्संदेह महान है जिसके मन में संसार के भोगों की कामना ना हो। और ये जब किशोर अवस्था में थे ना, बिल्कुल यंगस्टर, जब अभी तक बिल्कुल जवान थे, उस समय क्या हुआ, उनके पिता को इच्छा हुई सत्यवती के साथ विवाह करने की, परंतु सत्यवती के पिता ने ये कहा कि नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करवाऊंगा, मैं आपके साथ शादी इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका पुत्र, सत्यवती का जो पुत्र है, वो राजा बने। लेकिन जो शांतनु थे, जो कि भीष्म पितामह के पिताजी थे, वो जानते थे कि भीष्म जो है वो योग्य है और वही उत्तराधिकारी है, वो प्रथम पुत्र है, बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, तो उसी का अधिकार है राज्य पर। तो बहुत दुखी रहने लगे शांतनु को, बहुत दुख हो रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उनसे विवाह। लेकिन वो चाहते नहीं थे कि भीष्म का अधिकार उससे छीना जाए, तो उसने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा ही छोड़ दी। लेकिन जब बाद में भीष्म पितामह को पता लगा कि मेरे पिताजी की इच्छा है सत्यवती उससे सत्यवती से शादी करने की इच्छा है, लेकिन मैं कारण बन रहा हूँ, बाधा मैं बन रहा हूँ कि क्योंकि मैं राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं राज्य आपके पुत्र, जो सत्यवती का पुत्र होगा ना, उसी को दूंगा। तो फिर उसके पिता ने मना किया, बोला आपका उत्तराधिकार हो, आपका हक है, मैं आपसे वो नहीं छीन सकता हूँ। नहीं तो फिर उसने अपने पिताजी को नहीं बोला, जाके सत्यवती के पिताजी को कहा कि मैं जो भी आपकी पुत्री का संतान होगा ना, उसी को राज्य दूंगा, मैं राज्य नहीं करूंगा। वो परशुराम शिष्य थे, धनुर्विद्या सीख कर रहे थे परशुराम से, साक्षात माँ गंगा के पुत्र थे। और उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी पुत्री के पुत्र को ही राज का उत्तराधिकारी सिंहासन दूंगा, मैं कभी भी राज्य नहीं करूंगा। तब भी सत्यवती के पिता को ऐसा लग रहा था कि भले ये मना कर रहा है, लेकिन इसका जो पुत्र उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है, अब ये जब विवाह करेगा इसका पुत्र उत्पन्न होगा तो वो तो ये कहेगा ना कि मेरे पिता का अधिकार था और इस ये इतना खुद बलवान है, ये इतना ज्यादा महान है, इसके अंदर इतना बल है, तो इसका पुत्र भी तो कितना ज्यादा बलवान होगा। तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि मेरे पिताजी का राज्य है। तो उसने बोला नहीं, मैं करवा ही नहीं रहा हूँ बस अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी। तो वो समझ गए, उसी समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता लग गया था कि वो यही सोच रहे हैं कि बाद में यदि मेरे बच्चे पैदा होंगे तो मेरा बेटा तो क्लेम करेगा ना कि ये मेरे पिताजी का राज्य था। उसी समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतना बड़ा राज्य का उत्तराधिकारी वो अखंड ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ले। आज का एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है भोग करने के लिए, उसको भी यदि आप बोलो कि आप भगवान की भक्ति करें, क्या पिता की कुछ जरा सी ख्वाहिश को त्याग करने के लिए जीव जो है ना वो एग्री नहीं होता है। अब इतना बड़ा राज्य था, एकदम निष्कंटक, पूरे विश्व का राजा राजा हस्तिनापुर था उस समय। और आजकल अगर हम देखें, आजकल के युग में क्या होता है, 5 वर्ष के लिए राज्य मिलता है, वो भी किसका, एक खंडर राज्य को प्राप्त करने के लिए। और इस राज्य को प्राप्त करने के लिए पॉलिटिक्स लोग कितना पैसा बर्बाद करते हैं, कितना समय देते हैं, कितना टाइम लगाते हैं और कितने सारे लोगों को खिलाते हैं, अपने भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, पिता पिता का दुश्मन बन जाता है, सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं केवल ये छोटे से प्रधानमंत्री की सीट लेने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे विश्व का साम्राज्य एक क्षण में पूरा उसका परित्याग कर दिया। उस साम्राज्य के वो इकलौते वारिस थे, लेकिन उसी समय कहा कि नहीं, मुझे कुछ साम्राज्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा, संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा। जब पिता ने भीष्म का ऐसा त्याग देखा तो महाराज शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव बेटा, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप आपकी इच्छा के बगैर मृत्यु भी आप तक नहीं पहुंचेगी। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जब तुम्हारा दिल करेगा तब मरो, तब तुम में ना मृत्यु तुम्हें प्राप्त होगी। वास्तव में भक्तों, शांतनु महाराज बहुत महान व्यक्ति थे, जो भीष्म पितामह के जो पिताजी थे वो बहुत महान व्यक्ति थे, साक्षात गंगा के पति थे, गंगा मैया जो समस्त पापियों को पावन करने वाली थी उनके साथ उनका विवाह किया था और उनका नाम था शांतनु। शांत शांत का मतलब होता है सुकून, अनातन मतलब जो हमारा शरीर है, यानी जिसको भी अपने हाथ से वो छू लेते थे उनके शरीर का, उनके मन का सारा दुख दूर हो जाता था। इतने पवित्र राजा थे, इतने उनके अंदर शक्ति थी और वो अपने पुत्र की सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। हालांकि वो उत्तराधिकारी थे, उनका हक था, पर वास्तविक बात ये थी कि उनके अंदर भोगों के प्रति कोई आसक्ति थी ही नहीं, स्वयं त्याग दिया, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था, उनके पिताजी ने तो उनको बताया भी नहीं था। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी होती हैं शास्त्रों में जो हमारी बुद्धि जो है वो उसको समझ नहीं पाती। अब हमारे मन में आए फिर उनका, उनके पिताजी इतने अच्छे थे, महान भक्त थे, तो फिर वो सत्यवती के साथ विवाह क्यों करना चाहते थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बुद्धि जो होती है वो कम होती है, उनको समझ नहीं पाती है। भगवान की योजना होती है, क्योंकि सत्यवती जो थी वो वेद व्यास जी की माता थी, तो वेद व्यास जी को इसको इससे जोड़ने के लिए भगवान ने ये योजना की कि सत्यवती जो कि एक मछुआरे की पुत्री थी उनकी उनका विवाह जो है वो शांतनु के साथ, इतने बड़े कुल के साथ होना चाहिए ताकि वेद व्यास जी इस कुल में आए। और इस तरह से ये भगवान की योजना होती है, उसे हमें उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। और भीष्म पितामह इतना वैराग्य होने के साथ साथ महान ज्ञानी, ज्ञानियों के अंदर अहंकार, लेकिन इनके अंदर इतना वैराग्य कि राज्य का कभी भोग करने की इच्छा नहीं की। और इसके अतिरिक्त महान धनुर्धर थे, इतनी उनकी धनुर्विद्या ऐसी थी कि स्वयं भगवान परशुराम से उन्होंने शिक्षा ली थी और स्वयं भगवान परशुराम उनकी धनुर्विद्या से इतना ज्यादा प्रसन्न हुए थे। उन्होंने भगवान परशुराम से भी युद्ध किया था और टिकी रहे, हार नहीं रहा था कोई भी, निर्विशेष युद्ध हो रहा था और भगवान परशुराम बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी युद्ध कला से और उनको आशीर्वाद दिया था। और ये जो सेनाएं थी, दो सेनाएं कौरव और पांडवों की, उनमें कौरवों की सेना का 10 दिन तक वो सेनापति बने रहे, इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने ये सेनापति पद संभाला, बहुत ही वीरता के साथ लड़ते थे। महाराज युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले पितामह भीष्म से जब आशीर्वाद लेने के लिए आए तो पितामह ने कहा, विजयी बहु पुत्र। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, आपके रहते विजय कैसे हो सकती है, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो इस सेना के सेनापति हो, जब तक आप जीवित हो तो फिर हमारी विजय संभव नहीं है, आपका आशीर्वाद तो फिर निष्फल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका आशीर्वाद सफल हो तो कृपया हमें अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। युधिष्ठिर को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं उन्होंने बताया कि देखो बेटा, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब कोई स्त्री मेरे समक्ष आएगी तो मैं वहां पर युद्ध नहीं करूंगा, और वही अम्बा जिसका अपहरण उन्होंने किया था वहां से, केशीराज से, और उन्होंने शादी विवाह नहीं किया था जब अपने भाइयों के साथ, उस अम्बा को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और उन्होंने, अम्बा ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि कुछ भी हो जाए, कितनी चाहे मुझे उसके लिए जन पर जन क्यों ना लेने पड़े, ये भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, क्योंकि उसको अपहरण करके लेकर आए थे और अब उसका कोई रह नहीं गया था सहारा। हालांकि उसमें भीष्म पितामह की कोई गलती नहीं थी, वो एक अलग बात है, लेकिन अम्बा ने मन में ये ठान ली थी कि भीष्म के मरने का कारण मैं बनूंगी। और बहुत तपस्या की थी उन्होंने, बहुत बहुत तपस्या करके अलग अलग जन्म लिए थे और फिर उसको शिखंडी के रूप में, शिखंडी का उनको रूप मिला था। और 10वें दिन जब युद्ध का 10वां दिन आया था तब शिखंडी सामने आ गया था और अर्जुन के रथ के सामने शिखंडी खड़ा हो गया, सामने भीष्म पितामह थे। अब भीष्म पितामह शिखंडी के देखकर, क्योंकि वो जानते थे कि ये अम्बा ही है, इसीलिए उस समय उन्होंने, भीष्म पितामह ने अपना हथियार छोड़ दिया और युद्ध नहीं किया। उसी समय अर्जुन ने पितामह को सैकड़ों बाण लगा के उनको शीर्षैया पर लिटा दिया, बाणों की शैया पर पड़े पड़े, कोई भी आसपास नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार। युधिष्ठिर महाराज युद्ध समाप्त होने के बाद फौरन से अपने भाइयों को लेकर, समस्त बाकी जो रह गए थे उनको लेकर वो हस्तिनापुर चले गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर गांधारी जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी थी, उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई थी और धृतराष्ट्र, उन्होंने 100 पुत्रों को खोया था, वो बहुत बहुत दुखी थे और उनके माता पिता के बराबर थे, तो उनको सांत्वना देने के लिए वो बाकी सब जो पांडव थे वो सब हस्तिनापुर चले गए थे। और भीष्म पितामह वहां पर बाणों की शैया पर पड़े पड़े वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, बहुत याद करते थे कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म का स्मरण करते थे। एक दिन कृष्ण ध्यान लगा रहे थे, भीष्म पितामह को बहुत याद कर रहे थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे वासुदेव, आप ध्यान लगा रहे हैं, सारा विश्व, ब्रह्मा, शिव आदि सब आपका ध्यान लगाते हैं, आज आप किसका ध्यान लगा रहे हो? तब कृष्ण ने कहा, मैं अपने भक्त भीष्म का ध्यान लगा रहा हूँ। तो इतने बड़े भक्त थे, ज्ञानी थे, ब्रह्मांड में सबसे महान व्यक्ति। और जब सबको ये समाचार मिला तो संसार के समस्त लोगों के जितने देवर्षि थे, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, सब ही उनका प्रवचन सुनने के लिए वहां पर आए थे। और वो भी अपने शिष्यों के साथ प्रवचन में सम्मिलित हुए थे। बहुत सारे लोग अपने शिष्यों को लेकर आए थे। क्यों आए थे? मुख्य बात ये थी कि कृष्ण प्रेम के विषय में वो सब जानना चाहते थे। वो सब जितने भी ऋषि मुनि आए थे, उनकी तपस्या बहुत दृढ़ थी, उनके अंदर ज्ञान भी बहुत ज्यादा था। वो अपनी भक्ति और कृष्ण विषय में जो उनका प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसको बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए वो श्रवण करने के लिए आए थे। जैसे भगवान परशुराम, वो इतने महान धनुर्धर थे, उन्होंने स्वयं, वो तो भीष्म पितामह के गुरु भी थे, उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को धनुर्विद्या दी थी। वो धनुर्विद्या तो दी थी, परंतु भक्ति सीखने के लिए वो अपने शिष्य के पास आए थे। इतने इतने महान ऋषि जैसे नारद मुनि, वेदव्यास, असित, देवल, ये सब आए थे, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं। वास्तव में भगवद गीता में भगवान अर्जुन बताते हैं कृष्ण को कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप परम धाम हो, परम ब्रह्म हो, परम पवित्र हो, परम पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो। तो कृष्ण ने कहा, तुम कह रहे हो तो कौन सी बड़ी बात होगी, तुम तो मेरे मित्र हो। अर्जुन ने कहा, नहीं कृष्ण, ये मैं थोड़े ना कह रहा हूँ। वो कहते हैं, आहुस्तम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। मैंने कह रहा समस्त बड़े बड़े महान ऋषि और उनका नाम गिनाया, असितो देवलो व्यास, असित मुनि जिनका नाम हमने कल पढ़ा था, देवल मुनि, वेद व्यासी, नारद, ये सब कृष्ण तत्व वेता थे। वो कृष्ण को जानते थे, कृष्ण के वैभव को जानते थे, कृष्ण के परम ऐश्वर्य को जानते थे, लेकिन फिर भी वो आज सब आए हैं पितामह भीष्म के हृदय में जो भगवान की भक्ति है उसके उद्गार को सुनने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए। वास्तव में भक्तों, पितामह के हृदय में जो भगवान की भक्ति है ना, वो वास्तव में विरल है। जानते हो क्या कहते थे? वो कहते थे, पार्थ साथी में मेरी प्रीति हो, जिनके केश घोड़ों की ताप से उड़ी हुई रज से धूमिल है, और जिनके सुंदर मुख पर पसीने की बूंदे हैं, वो दाहने हाथ में चाबुक पकड़े हुए हैं, बाएं हाथ में घोड़ों की रस्सी और मुख पर ऐसे शब्द हैं, ऐसे कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मैं जन्म जन्म में उनका दास बनूं। इस प्रकार का भाव अत्यंत ही दुर्लभ है, इसी को सुनने के लिए सब आए थे। चाणक्य पंडित कहते हैं, सोना अगर कीचड़ में भी हो तो उसे उठा लेना चाहिए, और यदि कन्या सुशील हो तो भले ही वो छोटे कुल की क्यों न हो, उसे विवाह करना चाहिए। जब भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना, जब मटेरियल जो वस्तुएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें ये सब चीजें नहीं सोचनी पड़ती, तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के विषय में क्या मटेरियल कंसिडर करना। इतने बड़े बड़े महान ऋषि, ये ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, नारद मुनि, असित, वेद व्यास सब आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ से हमें भगवान श्री कृष्ण का पवित्र, परम पवित्र प्रेम प्राप्त होने वाला है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जिससे हम सीख रहे हैं, जिससे हम सुन रहे हैं, यदि कृष्ण प्रेम में हमारी उन्नति हो रही है, तो वो व्यक्ति अब ये क्षत्रिय है, और बारों की सैया में लेटे हुए थे, वहां पर अभी अभी कितना खून गिरा होगा, क्या जगह थी वहां पर, करोड़ों लोगों की हत्या हुई थी उस जगह पे बैठ के वो प्रवचन करने वाले, बैठ भी नहीं है, लेटे लेटे प्रवचन करने वाले हैं, और संसार के सब महान ऋषियां, यानी कि यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि वास्तव में यदि कोई कोई लोग सोचते हैं ना कि अब हम इस एरिया में नहीं जा सकते, यहाँ पर कृष्ण प्रेम मतलब अगर भक्त होते हैं बोले ये भक्त लोग का स्टैंडर्ड नहीं है, ये नहीं, वास्तव में हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमें यहाँ से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, तो फिर कैसे भी करके हमें वहां पर जाना चाहिए और अपने हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम सुप्त हो गया है उसे जगाने के लिए हर भरसर प्रयास करना चाहिए। एक और बात से नीति शास्त्र कहता है गुरु और वेद, यानी टीचर और डॉक्टर, जितने बूढ़े होते हैं उतने ही अधिक श्रेष्ठ होते हैं, यानी कि गुरु जिसे हम सीखते हैं वो अभी नया नया कोई आता है और हमें शिक्षा देना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो हमें सही तरह से, लेकिन बहुत दिन तक जब कोई साधना करता है, तपस्या करता है, जब उसकी साधना परिपक्व हो जाती है, जब वो संसारी वासनाओं से निरक्त हो जाता है, तब उसकी बात जब सुनी जाती है तो हमारे हृदय पर बहुत उसका असर होता है। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी कितने वृद्ध आयु में उन्होंने ये सब परिपक्व अवस्था में, और भागवतम महापुराण वेद व्यास जी के परिपक्व अवस्था में उन्होंने किया था, मतलब एंड लास्ट ग्रंथ है, उसके बाद कोई ग्रंथ नहीं था। तो और यहाँ पर उन परिपक्व वेद व्यास जी के द्वारा भीष्म पितामह, जिनकी आयु जानते हैं अभी कितनी है, 400 वर्ष, भगवान श्री कृष्ण उस समय 100 साल के थे और 400 वर्ष के थे भीष्म पितामह, तो और जैसे हमने कल पढ़ा दृष्ट्वा निपतितम भूमो देवश्चित्तम इवामरम, कि वो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई देवता आके वहां पर गिरा हो धरती पर, इतनी सुंदर 400 वर्ष की उम्र में इतना उनके हृदय उनके फेस पर इतना तेज था, क्यों? क्योंकि वो अखंड ब्रह्मचारी थे। और हालांकि भगवत गीता में उनके लिए शब्द आया है कुरु वृद्ध, कुरुओं में सबसे ज्यादा वृद्ध थे, बहुत बहुत ज्यादा बूढ़े थे, और यहाँ पर कितने दिनों से वो शेष शैया पर लेटे हुए हैं, खाया पिया कुछ भी नहीं है और ना ही वहां पर कोई उनकी उनका ख्याल रख रहा है, लेकिन उस समय भी वो ग्लोरियस थे, चमक रहे थे, उनका तेज मुख पे इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि कोई देवता है। और इसमें वास्तविक बात क्या है जानते हो, क्योंकि पार्थ सारथी का वह निरंतर चिंतन करते थे, एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण की छवि उनके नेत्रों से उनके मन से नहीं हट रही थी, वो निरंतर भगवान का चिंतन करते थे, और उनकी वास्तव में एक इच्छा थी कि जिनका मैं निरंतर चिंतन कर रहा हूँ वही पार्थ सारथी मेरी आंखों के आगे आए और उनको निहारते निहारते मेरे मन मेरा ये शरीर में त्याग हो, और भगवान तो क्योंकि सबके हृदय में रहते हैं तो अपने भक्त की ये बात को अपने भक्त की इच्छा को सार्थक करने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसा दुख उत्पन्न किया और किसी की बात उनको समझने नहीं दे रहे थे, ताकि भगवान चाहते थे कि वो अपने भक्त की ख्याति पूरे संसार में फैलाएं। इसीलिए भगवान समस्त पांडवों के साथ यहाँ पर आए थे कुरुक्षेत्र में, और सारे दूसरे ऋषि भी आए थे। जब भीष्म पितामह ने उन्हें आया हुआ देखा तो पूजयामास, जब उन्होंने देखा कि तान समेतान महाभागान उपलभ्य, जब उन्होंने देखा कि सब लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे पास आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, पूजयामास धर्मज्ञो, वो धर्म के ज्ञाता थे, वो जानते थे कि देश काल विभाग के देश काल और परिस्थिति के अनुसार लोगों का किस तरह से पूजन किया जाता है, क्योंकि जब पहले यज्ञ हुआ था इंद्रप्रस्थ में, जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करवाया था, तभी भी बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर आए थे और भगवान श्री कृष्ण ने, भीष्म पितामह ने बहुत बहुत स्वागत किया था सारे ऋषियों का, उनके चरण धोए थे, उनको खाना भोजन किया, भोजन कपड़े बहुत बहुत उनको दान दिया था। और वो जगह ऐसी थी ना, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देश काल विभागवित, कि वो जानते थे कि देश काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियम किस तरह से पालन किए जाए। जैसे अभी कोई गुरु अगर हमारे घर पे आते हैं तो सबसे पहले हम उनको दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर उनको आसन देंगे, उनको पानी का पूछेंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। लेकिन वही गुरु यदि हमें ट्रेन के डब्बे में मिलेगा तो क्या करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। वहां पर तो हम हमारी, क्योंकि वो हमारा घर तो नहीं है ना, लेकिन स्थिति के अनुसार हमें किसका किस तरह से स्वागत करना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। धर्मविद, वो जानते थे, धर्मज्ञ थे, वो जानते थे कि किसका किस तरह। अब देखा उन्होंने इतने सारे महान महान ऋषिगण आए, इतने सारे महान महान ब्रह्म ऋषि आए, तो सबका उनके पद के अनुसार स्वागत करना चाहिए। लेकिन वो इतनी विवश अवस्था में थे, सब जानते थे, सारे ब्रह्म ऋषि जो आए थे उन्हें पता था कि भीष्म पितामह तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने तो दूर की बात है, वो तो हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकते, उनके हाथ भी छिदे हुए थे बाणों से, वो हाथ जोड़ना तो क्या, वो गर्दन भी ऐसे ऐसे नहीं कर सकते थे, उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। इसलिए एक एक ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो भी थे, वो सब एक एक करके उनके सर के पास आते थे, उनको प्रणाम करते थे। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई है कि भले ही उनका शरीर स्वस्थ नहीं था, वो अभी उस समय सबका सादर सत्कार स्वागत नहीं कर सकते थे क्योंकि वो शारीरिक स्थिति से असमर्थ थे। और उस समय वे ना तो घर पे अपने थे, ना ही कोई ऐसी साज सामग्री थी, तो कैसे उनका स्वागत करते। लेकिन उनका मस्तिष्क पूरी तरह से कार्य कर रहा था, वो जानते थे कि मुझे किस तरह से उनका स्वागत करना है। उनके पास उस समय एक ही सिर्फ तरीका था स्वागत करने का, उनकी वाणी, मृदु वचन। वास्तव में भक्तों, जो भी आता था तो उनको देखकर भीष्म पितामह अत्यंत ही सुखद वचन बोलते थे। आपके दर्शन करके ऐसा लगता है कि मेरे निर्जीव देह में प्राण आ गए हैं, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के पूरे कष्ट दूर हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कष्ट, कोई दुख ही नहीं लग रहा है। आपके दर्शन करके ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम तपती हुई धूप में मुझे वर्षा का अनुभव हो रहा है। इस तरह के शब्द जब वो बोलते थे तो सब ऋषि, यहाँ पर लिखा वेद व्यास जी ने कि वो जानते थे, धर्मज्ञ थे, देश काल विभाग की इस स्थिति में मेरे पास मेरे शब्दों के अतिरिक्त और कोई स्वागत का तरीका नहीं है, तो वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे कि वो उनको अब हाथ नहीं जोड़ सकते थे, प्रणाम भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे सर से हाँ हाँ प्रणाम जैसा करते थे और हाथ से भी ऐसे करते थे, लगता था उनको कि वो प्रणाम कर रहे हैं, वो झुक रहे हैं, वो मतलब हृदय से सत्कार किया सबका। और वो इतने एक्सपर्ट थे, सब बात कर रहे थे, उनके पास अंदर इतना ज्ञान था और इतना, वास्तव में जब हम किसी का स्वागत करते ना तो उसको क्या दिया, क्या खिलाया, क्या पिला, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या शब्द उच्चारण किए, आपने, आपके अंदर जो भाव होता है ना किसी को देखकर, वो भाव सामने वाले को असर कर रहा होता है कि उसको देखकर मुझे जब उसने देखा तो उसको कैसा लगा। वो दिखाया उन्होंने कि वाकई में आपके आने से मैं बहुत कृतार्थ हुआ हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी मृत्यु सरल हो गई, इस अंतिम समय में आपके मुझे दर्शन हुए। तो भले ही शारीरिक रूप से वो असमर्थ थे पर फिर भी उन्होंने सबका सत्कार किया और इस सत्कार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं लगी। इसे ऐसे हम क्या होता है, हमारे घर में अगर हमें थोड़ा सा सर में दर्द भी होता है, कोई आता है तो फिर हमको कैसा लगता है कि क्यों आया ये, मैं कितना बिजी थी, और कोई कोई ऋषि आता है क्या, कोई मतलब गुरु आता है, कोई बोलेंगे अभी ये तो अभी आधा घंटा अपना प्रवचन शुरू करेगा, खाम खाया आया है, मैं तो रेस्ट करना चाहती थी मतलब। लेकिन वास्तव में जो भक्त होते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब किसी संत को देखते हैं, किसी भक्त को देखते हैं। आज हमारे घर पे घंटी बजाएगा ना कोई भक्त, कोई ये गुरुजन कोई भी होंगे ना, जो भक्त लोग घंटी बजाएंगे, दरवाजा खोलते हमारे मन में पहली बात क्या आती है पता है? जरूर कुछ ना कुछ डोनेशन लेने के लिए आया होगा, और फिर माइंड में यही चलता होगा भाई हाँ बस निकल रहे थे आप आ गए, अब बैठिए बैठिए ऐसे। लेकिन है ना, हमें वास्तव में जो भक्त होते हैं उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो जब हमारे घर में आते हैं या उनका दर्शन होता है, जो वास्तविक भक्त होते हैं शुद्ध भक्त, उनके दर्शन से हमारे हमारे जो हृदय के अंदर मलिनता है वो खत्म होती है। हमारा सौभाग्य है वास्तव में, वो दिन हमारा सबसे बड़ा लकी दिन होता है जिस दिन किसी शुद्ध भक्त के हमें दर्शन होते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के दर्शन हमें भगवान की ओर करीब पहुंचा देते हैं। इसलिए हमें भक्तों का दर्शन करके वास्तव में सदैव सुखी होना चाहिए, क्योंकि भक्त हमसे कुछ लेने नहीं आते हैं, बल्कि भक्त तो हमें कृपा देने के लिए आते हैं। यदि हमसे कुछ ले रहे ना, यदि हम डोनेशन के रूप में दान के रूप में उन्हें कुछ दे रहे हैं, तो वो भी समझो भगवान की कृपा है। ये हमारा धन तो खत्म होना ही है, या तो वो डॉक्टर की फीस में खत्म हो जाएगा, या फिर एक्सीडेंट के बाद जब कोई है ना गाड़ी का वो करना होगा, मैकेनिक को देना होगा, या फिर कोई और चोर चोरी करके चला जाएगा, या फिर कोई ब्याज वाला लेके खा जाएगा। लेकिन वही दान जो फिजूल में जाया हो सकता है, वो भगवान की सेवा में वो लगाएगा। ये भक्त का आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि वो आपसे दान लेता है। तो ये हमें हमें हमेशा प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी सेवा किसी तरह से भगवान के पास पहुंचाई जा रही है, और उस व्यक्ति का तो हमें हमेशा आभार मानना चाहिए कि उसके कारण मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 10। सूची कहते हैं, कृष्णं च तत्प्रभावाख्य आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माया माययोपात्ति विग्रहं। कृष्णं च तत्प्रभावाख्य आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहं। कृष्णं च तत्प्रभावाख्य आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहं। शब्दार्थ, कृष्णं च तत् प्रभावाख्य। कृष्णं अर्थात भगवान श्री कृष्ण का, च मतलब भी, तत् यानी उनका, प्रभावाख्य महिमा को जानने वाले भीष्म, यानी कि कृष्ण, अब क्योंकि बहुत सारे ऋषियों का तो उन्होंने सादर सत्कार किया, कृष्ण के साथ तो कृष्ण भी तो थे ना दूसरे, अब सारे ऋषियों का तो पहले ही उन्होंने बता दिया सूत गोस्वामी ने कि उन्होंने क्या किया, देश काल विभागत, देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनका स्वागत किया। लेकिन कृष्ण का स्वागत जरा हटके किया, क्योंकि वो साधारण नहीं थे। क्या थे? आसीनम जगदीश्वरम, वो जगत ईश्वर है, ब्रह्मांड के स्वामी है। वो उनका स्वागत तो एक अलग तरीके से करना चाहिए। अब उस समय भीष्म पितामह जो शेष सैया पर लेटे हुए हैं, वो भगवान का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, वो ना उठने में समर्थ हैं, ना पूजा करने में समर्थ हैं, ना चरण धोने में समर्थ हैं। वास्तव में वो किस प्रकार से भगवान का यहाँ पर अभिनंदन करेंगे, किस तरह से स्वागत करेंगे, वो धर्मज्ञ है, वो जानते हैं कि कैसे करना है। भगवान जगत ईश्वर हैं, संसार के मालिक हैं, और कहाँ हैं? हृदिस्थम, हृदय के अंदर, हृदय के अंदर आसीन है, वो हमारे हृदय में रहते हैं। पूजयामास, तो फिर उन्होंने क्या किया, वहीं पर बैठ के उनकी पूजा की, अर्थात मानसिक सेवा। वास्तव में भक्तों, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपदेश है हमारे कि भगवान जो है वो हृदय की पूजा को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली भगवान कोई, अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, साज सामग्री नहीं है, कोई समय या देश काल स्थिति के अनुसार मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकती हूँ, भगवान को भोग नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन भगवान मेरे हृदय में रहते हैं, हम मन से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस हम लोग सोचे कि अभी आज से मन में ही भगवान को भोग लगा देंगे, नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है देश काल और परिस्थिति के अनुसार। अब क्योंकि देश काल और परिस्थिति ऐसी थी कि वहां पर भीष्म पितामह का स्वस्थ सामर्थ्य शरीर नहीं था, उसका घर भी नहीं था, लेकिन अब भगवान आए थे, भगवान का स्वागत तो करना ही है, और हृदय स्तंभ पूजयामास, इसलिए हृदय के अंदर बिठाकर भगवान की षोडश उपचार से उन्होंने पूरी रीति से पूजा की। और आसीनम यानी भगवान ने भी क्या किया, क्योंकि भीष्म पितामह इधर उधर सर को भी नहीं ला सकते थे, तो भगवान ने क्या किया, एकदम वहां पर आके खड़े हो गए जहां पर के भीष्म पितामह की दृष्टि बहुत ही सरलता से जा रही थी, और वहां पर आके खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और भीष्म पितामह जी भर के उनको अपने नेत्रों से उनके स्वरूप को पी रहे थे, देख रहे थे उनको, नेत्रों से अश्रुधाराएं बह रही थी, और भीष्म पितामह उनको पूरी उनकी पूजा करते थे। पहले उनको नेत्रों के जल से उनके चरणों को धोया, फिर उनको आसन बिठाया, हृदय के आसन पर उनको बिठाया, और उनका पूरा षोडश उपचार से उनका अभिषेक किया, उनका स्वागत किया, जो जो मन में आया वैसे उनकी पूजा की उन्होंने। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंग शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान भीष्म के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। अर्थात यहाँ पर बता रहे वेद व्यास जी की भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान जगदीश्वर हैं, सबके हृदय में रहते हैं, और वो मन के भाव को स्वीकार करते हैं, इसलिए विधिवत यानी विधि से पूजा की हृदय के अंदर। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का दर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म है, प्रत्येक वस्तु में कण कण में भगवान का दर्शन होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक के प्रत्येक दृश्य परमाणु के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। भगवान संसार के कण कण में उपस्थित है। जब वे इस भौतिक जगत में अपने दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे ऐसा अंतरंग शक्ति से करते हैं। भगवान की दो शक्तियां होती है, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति ये माया है, और अंतरंग शक्ति से भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप, भगवान के गुण, इन सब का प्रदर्शन होता है। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अपनी दिव्य अंतरंग शक्ति के द्वारा वो कार्य करते हैं। बहिरंग शक्ति या माया, इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता है। माया का लेश मात्र भी नहीं होता है भगवान। यानी जिस तरह से हमारा पूरा शरीर भौतिक प्रकृति का बना हुआ है, और उसके अंदर जो आत्मा है वो नित्य है, लेकिन भगवान का पूरा शरीर जो होता है वो भी नित्य होता है, सच्चित आनंद होता है। भगवान के अंदर माया का लेश मात्र भी नहीं होता। इसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य स्वरूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव जानते थे, वो ज्ञात थे उनको, अतएव उन्होंने उसी के अनुसार उनकी पूजा की। क्योंकि भीष्म पितामह बहुत महान ज्ञानी थे, वो भगवान के इस वास्तविक स्वरूप को जानते थे, भगवान की वास्तविक स्थिति को जानते थे, वो जानते थे इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से भगवान का कोई सरोकार नहीं है। ये सब उपचार हम क्यों करते हैं, विग्रह सेवा, कि हमारा मन भगवान में लगे, और भगवान में मन टिकाने के लिए, भगवान के तरफ मन को आकर्षित करने के लिए हमको विग्रह की, सेवा की, ये सब विधि विधान की आवश्यकता होती है। लेकिन भीष्म पितामह अभी उनका मन जो है वो 100% भगवान के ध्यान में लगा, उनको कोई भौतिक आसक्ति ना थी, कोई भौतिक वस्तु की। जब अभी तो वो शिष्यार पर लेटे हुए हैं, जब वो किशोर अवस्था में थे तब भी उन्होंने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया था, किसी वस्तु की ओर कोई आकर्षण नहीं, कोई आसक्ति नहीं, केवल भगवान के श्री चरणों के अंदर उनकी आसक्ति थी, और भगवान के वास्तविकता को जानते हुए उन्होंने उसी तरह से भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, भगवान का स्वागत किया। कि कृष्ण तुम्हारा कितना उपकार है, मैं भले इस योग्य नहीं हूँ, मैंने जीवन भर विवशता में गुजारा, धर्मियों का साथ दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने के लिए आए, तुमने फिर भी अंतिम समय में मेरी मुझे याद किया, मुझे दर्शन दिया, तुम बहुत महान हो। कृष्ण को बहुत कृष्ण का स्वागत किया और आगे हम कल पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।